ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने जब स्वर्णिम संसार हेतु अपने ब्रह्मावत्सों को निहारा तो उन्हें एक एक वत्स विशिष्ट प्रकार से प्रकाशित दिखा, जो इस ज्ञान यज्ञ के निमित्त अपना विशेष स्थान रखते हैं और अथक सेवाधारी स्वरूप में जाने जाते हैं। इन सभी योग्यताओं से संपन्न भ्राता आदरणीय आत्म प्रकाश जी हमारे समक्ष हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी ब्रह्मावत्स जब बाबा से मधुर मिलन मनाकर जाते हैं तो मधुबन की यादगार अपने साथ क्या ले जाते हैं? टोली ले जाते हैं। मधुर याद प्यार या वरदानों के साथ साथ जितनी मीठी टोली, जितने गुणों के भंडार बाबा ने भ्राता जी को दिया, उतनी ही मीठी मीठी प्यार भरी टोली भ्राता जी आप तक पहुंचाते हैं। सन 1972 में बाबा के दिल तख्त पर भ्राता जी ने अपना स्थान बनाया और 1976 में अपना सर्वस्व समर्पित कर यज्ञ में अथक सेवा देने का फैसला किया। विगत 4 दशकों से आपने देश विदेश में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में अपने राजयोग के गहन अध्ययन से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। वर्तमान समय आप यूथ विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज के विषय सबसे बड़ी कला मन प्रभु में लगाना। आप हम सब के अमृत वचनों के आधार पर अपने अनुभवों से हमें मन को प्रभु में लगाने की सुंदर विधि हमारे समक्ष रखेंगे भ्राता आत्म प्रकाश जी।
ओम शांति। सबसे बड़ी कला मन को प्रभु में लगाना। इस संसार में मनुष्यात्माओं के पास विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाई देती हैं, लेकिन इस संसार में मन को सबसे बड़ा माना गया है। कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ऐसा बड़ा मन जब ऊंच से ऊंच प्रभु के ध्यान में जब लग जाता है तो वास्तव में वो सबसे बड़ी कला है। बहुत थोड़े आत्माओं को वो कला प्राप्त होती है। इसलिए संगम युग में परमात्मा हम बच्चों को यह कला प्रदान करते हैं और इसी कला से चढ़ती कला की अनुभूति, उड़ती कला की अनुभूति करते हुए हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इसलिए संगम युग में इस कला को प्राप्त करना अति आवश्यक है। वास्तव में मन को जब प्रभु के ध्यान में लगाते हैं उसको मन मना भाव के मंत्र का जाप करना कहते हैं। इस मंत्र के जाप से विशेष हम सभी आत्माएं शक्तियों के खजाने से भरपूर होते हैं। इस मंत्र के जाप से पिछले जन्मों का जो पापों का बोझ है वो बोझ भी आत्मा पर से हटता है। और तीसरी बात, इस मंत्र के जाप से जो भी सारा संसार प्यासा है प्यार के बूंद के लिए, उस प्यार के सागर से हम स्वयं पर प्यार बरसाने का अनुभूति भी करते हैं, अर्थात स्वयं को प्रभु प्यार से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को याद की फैक्ट्री गिफ्ट में दी है। उस फैक्ट्री का इनकम एक सेकंड का अनेक पद्मों का है। ऐसी दुनिया में कोई भी फैक्ट्री नहीं है जिसका इतना बड़ा भारी इनकम हो। तो प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को यह याद की फैक्ट्री दी है, उसका मालिक है आत्मा, उसका मैनेजर है बुद्धि, और उसमें कर्म करने वाला कर्मचारी है मन। जब बुद्धि मैनेजर मन रूपी कर्मचारी पर सुचारू रूप से अनुशासन करता है तो इस फैक्ट्री का इनकम बहुत अच्छा होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। लेकिन ये जो मन कहीं इधर उधर भटकने लगता है तो फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। इसलिए इस फैक्ट्री को निरंतर चलाते रहना है, हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहना है, इसमें हमें व्यस्त रहना है। तो मन प्रभु में सदा लगा रहे, वो इधर उधर न भटके, उसमें कौन से प्रकार की बाधाएं आती हैं इस मंत्र का जाप करने में, और उन बाधाओं को कैसे हटाया जाए, उस पर हम थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है, देह की स्मृति और देह के आकर्षण से हमारा मन विचलित होता है। हमारा अपने देह से बहुत जबरदस्त लगाव होता है, क्योंकि हमारा बेहद प्यार हमारे देह से है। अब जब देह का भान रहता है, देह की स्मृति रहती है, तो मन न चाहते हुए देह के इस दुनिया में भटकने लगता है और देहधारियों के प्रति आकर्षण होना, यह भी हमारा कड़ा संस्कार बन चुका है। तो इन दोनों बातों से न्यारा रहने के लिए एकांत में बैठकर हमें विदेही स्थिति का अनुभव करते जाना है। इस देह रूपी वस्त्र से इस विदेही आत्मा को एकदम अलग अनुभव करना है। और जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके भ्रुकुटी में गुप्त रीति से आत्मा देखने का अभ्यास बढ़ाते चलें, तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझने से मन का भटकना बंद हो जाता है। स्वयं के भ्रुकुटी में फुल स्टॉप लगाना और सामने वाली व्यक्ति के भ्रुकुटी में फुल स्टॉप लगाना अर्थात मन के व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना। तो ऐसे समय मन हमारा सुचारू रूप से कार्यरत रहता है। दूसरी बात, मन हमारा भटकता है क्योंकि मन जब देह की दुनिया में और देह के पदार्थों में लग जाता है तो ये पुरानी देह की दुनिया है। इस दुनिया से हमारा रिंचक मात्र भी लगाव न हो, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव होता रहे, इसके लिए हमेशा समझें कि मुझ आत्मा ने इस बेहद के सृष्टि रंगमंच पर 5000 वर्ष का बहुत अच्छा पार्ट बजाए हैं। अभी मैं आत्मा रिटर्न जर्नी पर हूं। ये पुरानी दुनिया गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस कितना भी सुंदर होता है तो भी हमारा मन अपने रेस्ट हाउस के तरफ, अपने घर के तरफ सोते ही जाता है। तो असली हमारा गेस्ट हाउस है ये पुरानी दुनिया और हमारा असली रेस्ट हाउस है परम धाम। तो परम धाम के तरफ जब बुद्धि हमारी जाती है तो इस पुरानी दुनिया से लगाव हमारा हटने लगता है और ये जो भी देह के पदार्थ हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो उनको देखते समय ऐसा ही समझें ये तो विनाशी चीजें हैं, विनाशी पदार्थ हैं, थोड़े समय के लिए हैं, हमें इन चीजों को छोड़कर जाना है। तीन विनाशी चीजों से क्या हमें मन लगाना है, ऐसा हमें महसूस करना है और बेहद का वैराग्य अनुभव करते जाना है। क्योंकि मन जब पुरानी दुनिया से हट जाता है, देह के पदार्थों से हट जाता है तो प्रभु के ध्यान में सहज लगने लगता है। तीसरी बात है, मन हमारा तब भटकता है जब किसी न किसी संबंधी के पीछे हमारा मन आकर्षित होता है। क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ पुराना हिसाब किताब होता है, इसलिए कोई न कोई संबंध हमें न चाहते हुए भी खींचता है। हमें ये महसूस करना है कौन से संबंध के पीछे मेरा मन भागता है, विशेष वो संबंध की अनुभूति हमें बाबा के साथ करनी है। परमात्मा को पारसनाथ कहते हैं, पा रस नाथ, वो एक ही ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं। तो जब परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति हम करते हैं तो ये दुनियावी देह के संबंध हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। बाबा ही मेरा संसार है ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। इस सांसारिक रिश्तों से मन हमारा उपराम होने लगता है। तो इसलिए संगम अर्थात परमात्मा के संग में रहने का युग, तो ये संगम का मुझे पूरा लाभ लेना है और बहुत अच्छी तरह से मन प्रभु के ध्यान में लगाते रहना है। क्योंकि हमारा मन ये देह है, देह के पदार्थ हैं, देह की दुनिया है, देह के संबंधी है, इनों में ही फंसा रहता है। इनसे अगर आपको न्यारा मन को रखना है तो उदाहरण देता हूं, जब वैज्ञानिक सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं और जब वो पृथ्वी के आकर्षण के क्षेत्र से परे हो जाता है तो वो सैटेलाइट निराधार कई वर्षों तक वहां रहता है और उसको कम्युनिकेशन के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे हमारा मन बुद्धि जब ये देह की दुनिया से परे हो जाती है, उसके आकर्षण के क्षेत्र से परे हो जाता है, उसके बाद ही हम बाबा के पास परम धाम में लंबे समय तक मन को टिका सकते हैं, मन मना भव का मंत्र का जाप अजाप अजाप कर सकते हैं। इसलिए जैसे कृष्णा ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, उनका नाम मोह न है, मोह उनका किसी से भी नहीं है। अगर उनके साथ आपको बैठना है तो ये पूरे सृष्टि से हमारा मोह नष्ट करना होगा, तभी हम स्मृति लब्धा अर्थात प्रभु के स्मृति में खो सकते हैं। चौथी बात है, मन सारे दिन भर में हमारा कारोबार में रहता है, व्यस्त रहता है। कितना समय हम कार्यक्षेत्र पर ही बिताते हैं, तो कार्यक्षेत्र पर रहते हुए मन बाबा की याद में सदा खोया रहे, ऐसा हम अगर चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है मन बुद्धि को सदा लाइट रखना। क्योंकि जब मन हमारा हल्का रहता है तो न चाहते हुए बाबा के पास जाता है, बाबा के ध्यान में मस्त रहता है। तो मन को सदा हल्का रखने के लिए कुछ एक युक्तियों को जीवन में अपनाना जरूरी है। सबसे पहली युक्ति, जब हम कार्य करते हैं तो कर्म क्षेत्र पर तीन बातों का प्रभाव अपने मन पर होने की संभावना होती है। पहला, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव हो सकता है, जिस वायुमंडल में हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव हो सकता है, और जो कर्म करते हुए साथी होते हैं उनों के स्थिति का प्रभाव हो सकता है। और इन तीनों बातों के प्रभाव से अगर हमें निर्लिप्त रहना है, इसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, स्वमानधारी होकर सेवा क्षेत्र में उतरना है। जब हम स्वमानधारी होकर रहते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति बहुत अच्छी होने लगती है, तो इन बातों के प्रभाव से हम न्यारे अनुभव करते हैं। क्योंकि आत्मा पर जब ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है तो दुनियावी नशे, दुनियावी बातों का प्रभाव से वो न्यारी रहती है। दूसरी युक्ति है, मन को सदा लाइट रखने के लिए जो हमें जिम्मेदारी मिली है लौकिक अलौकिक कार्य करने की, उस जिम्मेदारी को बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करना है। प्रकाशमणि दादी जी हमेशा कहती थी, अगर लाइट रहना है तो स्वयं को निमित्त समझना है। बाबा करावनहार है, मैं केवल करणहार हूं। और जब हमारी जिम्मेदारी का बोझ हम बाबा पर रख देते हैं तो स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करते हैं। मन को सदा लाइट रखने के लिए तीसरी युक्ति है, कर्म क्षेत्र में हमेशा स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता समझें। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी हुई है और इसे फरिश्ता स्वरूप में मैं सेवा पर उपस्थित हूँ, तो ऐसा समझने से कभी थकावट नहीं आती है। स्थूल देह समझने से थकावट मन अनुभव होती है, मन भारी होने लगता है और लाइट का शरीरधारी अनुभव करने से एकदम अथक अनुभव करने लगते हैं। दूसरी बात, अगर कर्म क्षेत्र में कोई ऊंची नीची बात हो जाती है उस समय नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते रहें, ड्रामा की बिंदी को लगाना सीखें, तो स्वतः ही हमारा मन हल्का रहता है और कर्म के साथ योग चलता रहता है। मन हमारा मन मना भाव का जाप करता ही रहता है। तो इसलिए इन बातों को अपनाकर हमें कर्म क्षेत्र पर स्वयं को लाइट अनुभव करना है, तभी हमारा मन बाबा की याद में सहज टिकने लगता है। और पांचवी बात, मन का भटकना बंद करने के लिए हर रोज रात्रि सोने के पहले हमें मन बुद्धि संस्कार इनों का दरबार जरूर लगाना है। मन बुद्धि संस्कार ये आपस में कैसा काम करते हैं, कभी मन मंत्री को पूछें, भाई मन कितना आप बुद्धि को सहयोग देते हो, संस्कारों के वश होकर तो नहीं चलते हो पुराने, तो मन को अपना मित्र अनुभव करें और मन से जास्ती सहयोग लेना सीखें। तो इसलिए दरबार लगाने से मन कितने हमारे अनुशासन में है, नियंत्रण में है, ये हमें पता चलता है और उस पर नियंत्रण और बढ़ाने के लिए भी हमें प्रेरणा मिलती है। बाबा कहते हैं विशेष याद का चार्ट भी रखना सीखो, क्योंकि याद का चार्ट रखने से हमें पता चलता है कितनी मेरी अविनाशी कमाई हो रही है और कितना मेरा समय सफल हो रहा है और कितना निष्फल हो रहा है, ये हमें पता चलता है। इसलिए मन पर पूरा नियंत्रण और अनुशासन रखने के लिए इसका दरबार हम लगाते हैं तो हमें जरूर उसमें उन्नति का एहसास होता है। हम देखते हैं चलते चलते ब्राह्मण जीवन में मन मना भाव का मंत्र का जाप करते करते हम थक जाते हैं, कभी कभी बोर भी अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों अनुभव होता है भाई? मन प्रभु में लगाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे प्राप्ति बड़ी कराने वाली कला है, वो हमें कभी कभी बोर हो जाता है अभ्यास। उसका कारण ये है, मन मना भव के मंत्र के साथ साथ मध्याजी भव के मंत्र का भी जाप करना सीखें, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं कार्य करने के लिए पीछे सोचते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या, क्या मुझे इससे प्राप्ति होगी, तो मध्याजी भाव का जो बाबा लड्डू दे रहे हैं, 21 जन्मों की इतनी बादशाही दे रहे हैं और संगम युग में इतनी खजानों से हमें भरपूर कर रहे हैं, तो ये हमें भूल जाता है, तभी मन हमारा मन मना भाव का मंत्र जाप करने के रुचि नहीं रखता है। इसलिए बीच बीच में मध्याजी भाव को भी याद करते रहें तो हमारी रुचि बरकरार रहती है, हमारा उमंग उत्साह जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है। अभी मन प्रभु की याद में सदा लीन रहे, सदा टिका रहे, उसके लिए कुछ बातें जानने की और जरूरत है। परम धाम में जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो बाबा के पास बैठते समय मन की बैठक कैसी हो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात उसमें, जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो कभी भी हमारे मन में हिचकिचाहट ना हो। कई बार हम सोचते हैं बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज है, काले धब्बे हैं, तो कैसे मैं बाबा के समीप बैठ सकूंगी आत्मा। तो ऐसी हिचकिचाहट हमारे मन में ना हो, बड़े ठाट से बड़े मस्ती से हमें बाबा के समीप बैठना है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो, बच्चे को अपने बाप के गोदी में ही नहीं लेकिन कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाट से हमें बाबा के पास बैठना है। दूसरी बात, बाबा के पास बैठकर हम बाबा से खजाने मांगे नहीं। अमृत वेले कई बार हम कहते हैं, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना। तेज़ भिखारीपन की स्थिति में हमें नहीं बैठना है, अधिकारी स्थिति में बैठना है। बाबा के पास जो भी खजाने हैं उन पर हम बच्चों का अधिकार है, तो अधिकारीपन में हमें बैठना है। और तीसरी बात, जब बाबा के पास बैठते हैं तो मन की बैठक साधारण न हो, स्वयं को साधारण आत्मा अगर समझेंगे तो आपको साधारण करंट मिलेगा, बहुत थोड़ी शक्तियां मिलेगी। लेकिन उसके बजाय समझे बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाबा शक्तिशाली है तो मैं भी मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ऐसे शक्तिशाली बैठक में जब बैठते हैं, विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के समय, तो शक्तियों के सागर से शक्तियों का अमृत अथाह हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मन प्रभु की याद में सदा टिका रहे उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आवश्यक है, प्रभु के प्रति हमारे दिल में प्यार बढ़ते रहना जरूरी है। दिन प्रतिदिन मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना अनवरत बहता रहे, बस बहता ही रहे, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि रूपी तार स्वतः ही जुड़ जाती है। जैसा प्यार होता है वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती है, जितना प्यार होता है उतनी देर तक तार टूटती ही नहीं है, जुटी ही रहती है। इसलिए मेरे दिल में असीम परमात्म प्यार बढ़ता रहे। लेकिन प्यार किससे होता है, प्यार किससे बढ़ता है, जिससे हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं, वो प्राप्तियां जो हो रही है उसको हम भूल जाते हैं, उसकी महसूसता हमें नहीं होती है, इसलिए बाबा के प्रति प्यार हमारे दिल में नहीं बढ़ता है। तो प्राप्तियों को अनुभव करते रहें और प्राप्तियों की स्मृति सदा बरकरार रहें और प्राप्तियां हमेशा सामने रखें, तो बाबा से हमारे दिल में प्यार बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास है क्या जो मुझे दोगे, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, फकीर तो हो, आपके पास केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, वो मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल प्यार का सौदा करने के लिए आया हूँ 5000 वर्षों के बाद। बोलो करोगे मुझसे प्यार का सौदा? मैं बहुत पक्का सौदागर हूँ, मैं बहुत पक्का सौदागर हूँ। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूँगा, थोड़ा ही कम जास्ती नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो अमूल्य पूंजी है दिल का सच्चा प्यार, वो हमें प्रभु को ही सौंपना है, प्रभु के ही साथ उसका बिजनेस करना है, वहीं उनको प्यार को टिकाना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ हमें प्यार को शेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जो अपने प्यार का शेयर किसी के साथ करते हैं वो कभी भी शेर की तरह शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं, क्योंकि माया की जो दुनिया है उसमें शेर की तरह अगर दहाड़ना है तो परमात्मा के साथ ही हमें प्यार करना है, किसी के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो प्यार है वो जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना मन बाबा के प्रति जुड़ जाता है, मन हमारा परमात्मा का ध्यान का जो मन का है वो फेरता रहता है। इसलिए योगियों की इतनी महिमा है, क्योंकि योगी हमेशा प्रभु प्रेम में सदा लीन रहते हैं। योगियों के पास विशेष 2 कलाएं होती हैं, इसलिए इनका गायन इतना होता है। वो चतुर सुजान के चतुर बच्चे होते हैं, माया दुश्मन के राज में रहते हुए भी अपने मन बुद्धि को माया दुश्मन के वार से सदा सेफ रखते हैं। और दूसरी चतुराई उनके पास ये होती है, ये तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उससे ठिकाने पर अपने मन बुद्धि को ठाकुर बनकर ठिकाने पर लगाते हैं और अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं, स्वयं को माला माल करते हैं। ये चतुराई ये बुद्धिमानी उनके पास होती है, इसलिए हमें ये वरदान बाबा से जरूर लेना है। मन को अर्थात संकल्पों को परमात्मा जो पावर हाउस है, आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, उनसे मन जोड़ जाता है तो स्वतः ही संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आने लगती है और धीरे धीरे आत्मा की ऊर्जा की लेवल बढ़ती जाती है, आत्मा शक्तियों से संपन्न होती रहती है। इसलिए एक एक संकल्प और एक एक सेकंड बाबा की याद में सफल करना है, यही तात सदा लगी रहे। हर एक संगम युग का हर एक सेकंड हमें कहता है परमात्मा के साथ सेखेन करते चलो, अर्थात अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहो। तो ऐसा सेखेन बाबा के साथ करते रहना है और हर एक संकल्पों को बाबा की याद में टिकाते जाना है, क्योंकि ये 2 खजाने हम सभी पुरुषार्थियों को मिले हैं। इन 2 खजानों को जितना हम सफल करते हैं उतना हमारा नंबर आगे बढ़ता है, इन 2 खजानों को जितना हम निष्फल करते हैं उतना हमारा नंबर पीछे हटता है। इसलिए थोड़ा सा एक बात में सूक्ष्म अंतर जो है मन बुद्धि पे वो हमें अनुभव करना जरूरी है। मन को बाबा में लगाना है ये हम तो सभी चाहते हैं, लेकिन स्वयं को जब हम आत्मा समझते हैं, आत्मा तो ये शक्तियों का पुंज है, तो शक्तियों का पुंज आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है और कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर अंतर हमारे सामने स्पष्ट होना जरूरी है। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं पांडव भवन का, हम आपको पूछते हैं पांडव भवन देखा है, उसका गेट देखा है, तो आपको गेट दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, पांडव भवन का गेट कैसा है? बहुत प्यारा है, ऊपर सृष्टि का ग्लोब दिखाया है, शिव बाबा की किरणें उस पर पड़ रही हैं, ये सोच सोच कर आप मुझे बता रहे हैं। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर क्लियर जब होता है तो मन हम प्रभु की याद में सहज लगा सकते हैं और उसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इसलिए अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर और बहुत गहन योगाभ्यास का अनुभव करेंगे, प्रभु की ध्यान में मन को लगाने का अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सभी करना चाहते हैं ना? बहुत अच्छा, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, बहुत सुंदर अनुभूति आपको बाबा कराएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा रूपी तपस्वी विराजमान हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी तपस्या में खोया हुआ हूं। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी हूं। शांति की किरणें शांति के प्रकंप चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी नखुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को चमकते हुए बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। निराकार शिव पिता की मैं निराकारी आत्मा संतान। भाग्य विधाता भगवान ने अपना बनाकर मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, स्वयं भाग्य विधाता बाप हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं निराकारी आत्मा इस देह रूपी गुफा से बाहर निकलकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हो, कितनी सुंदर न्यारी निराली दुनिया है यहां, चारों सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है, कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, अति प्यारे शिव पिता भी उनके ब्रुकटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि देकर नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं फरिश्ता अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रहा हूं, जा रही हूं। मैं आत्मा निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, कितनी प्यारी न्यारी निराकारी दुनिया है यहां चारों सुनहरी लाल ये लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। मेरा मन भी प्रभु प्रेम में खो गया है। मेरे दिल की दुनिया में बस केवल मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। इतने विशाल परम धाम में केवल बाबा और मैं ही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर होती जा रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ज्ञान सूर्य शिव पिता से स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। स्वयं को शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। वहरी में वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे बाबा, बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। बाबा की सुखद कंपनी को मैं आत्मा बहुत एंजॉय कर रही हूं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूं, आ रही हूं। और इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा तपस्वी पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रहे हैं। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रहे हैं। शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में मज शक्तिशाली आत्मा से चारों फैल रही है। मज निराकारी आत्मा के चौर सुंदर आभा मंडल, सुंदर प्रभा मंडल लाइट का औरा अनुभव हो रहा है। निराकार शिव पिता की मैं आत्मा निराकारी संतान हूँ, निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। अपने मन को कैसे व्यर्थ से बचाएं और गेस्ट हाउस समझेंगे तो रेस्ट हाउस में रहकर बाबा की वो सूक्ष्म पालना ले सकेंगे। एक बार जोरदार तालियों से भाई सबका धन्यवाद करते हैं।